और हम जब मरण निकट आ जावे तब किस तरह अपने देह का त्याग करें, और उसी प्रक्रिया पर अपन विचार कर रहे हैं। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि हम जीवन भर किस तरह जीवन जिए कि हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ जाए, या तो ऐसा कहें या कि हम जीवन भर कैसे अपना जीवन जिए जिससे कि आखिरी समय और हमारे परिणामों में देह का परित्याग करते समय समता बनी रहे। दोनों एक ही चीज है। जिसने जीवन भर अपने जीवन को व्यवस्थित, अनुशासित और निष्प्रय होकर के जिया होगा, वो जीवन के अंत में भी समता भाव रख सकेगा। यही प्रक्रिया जीवन को जीने की है। जैसे अपन नाव में यात्रा करते हैं तो नाव इतनी मजबूत तो होनी चाहिए कि जो बीच में कहीं डूब ना जाए या उसमें पानी ना भर जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि नाव की ही सेवा में और हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दें और उस पार की यात्रा हो ही ना पाए। शरीर को नाव माना है और उसमें बैठा हुआ जो आत्मा है वो नाविक की तरह है, और नाविक की होशियारी ये है कि उसे किस दिशा में नाव को ले जाना है और नाव को बीच में नदी के उठने वाली भंवरों से किस तरह बचाना है और नाव में छेद ना हो पावे, पानी ना भर पावे, इस बात की पूरी सावधानी रखना है। नाविक जैसे ये सारी बातें जानता है, ऐसे ही हमारे जीवन में हमें अपने शरीर के बारे में ये सावधानी रखनी चाहिए। रोग शोक व्याधि हो जाना छेद हो जाने जैसा है, और काम क्रोध कषायों में फंस जाना भंवर में फंसने जैसा है, और अज्ञानतावश अपने आत्म तत्व से विमुख होकर के और संसार में ही अपने को आनंदित मानना, सुखी मानना, यही तो दिशा भटक जाना है। भाई जो ज्ञान पूर्वक अपने उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति की दिशा में ही अपने जीवन को ले जाता है, वासनाओं इच्छाओं कामनाओं और पापों से बचा रहता है और निरंतर अपने शरीर के प्रति अनाशक्त होकर के शरीर को उतना ही देता है जितने में कि शरीर अपना काम करता रहे और आगे बढ़ता रहे, ऐसा जिसने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया है वही जीवन के अंत में इस देह का समतापूर्वक त्याग कर सकता है। एक बच्चा नाव चलाता था। नाव में जो लोग बैठते थे वो उससे पूछते थे कि भाई क्या इस नाव को तुम अभी अभी चला रहे हो या कि बहुत दिन से चलाते आए हो। बोलता, मैं तो अभी अभी शुरू किया हूं चलाना, पहले तो मेरे पिता चलाते थे। तो पिता कहां गए? पिता नहीं रहे। अरे तो क्या हुआ था पिता को? वो नाव चलाते चलाते एक दिन नाव के डूबने से स्वयं भी डूब गए। अरे भाई, पिता नाव में डूब गए तो फिर तुम्हारी मां तो होगी, वो तुम्हें संभालती होगी, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी नाव चलाने की? तो बोलता, ना मां भी नहीं रही, एक दिन वो भी इसी नाव में डूब गई, और एक दिन मेरे से बड़ी जो बहन थी वो भी यही नाव खेते खेते डूब गई। अब तो जो भी सुनता वो आश्चर्य करता कि जब इसी नाव के चलाने से तुम्हारे पिता डूब गए, मां डूब गई और बहन भी डूब गई, फिर भी तुम इस काम को नहीं छोड़ते, फिर भी तुम नाव चलाते हो। तो उसने कहा, कि मरने को तो वे लोग भी मर जाते जो कभी नाव में ही नहीं बैठे, किनारे पर खड़े। इसलिए मैं मरने से भयभीत नहीं हूं, नाव नहीं डुबोती है मुझे, मेरी असावधानी मुझे डुबा सकती है। पिता की और मां की और बहन की मृत्यु में उनकी असावधानी कारण है नाव, और ये नाव से उस पार जाना ये उनके डुबाने में निमित्त हो सकता है, लेकिन असावधानी तो स्वयं की है। संसार में हमसे पहले और बहुत लोग इसी में डूब गए होंगे, सो उनको देख करके कि अरे भैया किसके बस का है, ये तो सब बातें कहने सुनने की हैं, जीवन के अंत में तो सब घबराते हैं, सब मरने से भयभीत होते हैं, कौन है ऐसा बलवान, कौन है ऐसा साहसी जो जीवन के अंत में देह को छोड़ते समय और साहस बनाए रखे और समता पूर्वक अपनी देह को छोड़े, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा मान करके बैठ नहीं जाना, कोई नहीं कर पाया लेकिन मैं तो करूंगा, ऐसा हमारे भीतर भाव आना चाहिए कि भले ही और लोग जीवन के अंत में घबरा करके प्राण का त्याग कर देते हैं, मैं तो समता पूर्वक प्राणों का विसर्जन करूंगा, देह का विसर्जन करूंगा, ऐसा साहस होना चाहिए। तब जाकर के ये संलेखना या समाधि मरण जीवन में प्राप्त हो पाता है। वर्णी जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी ने भी संलेखना ली, उनकी संलेखना का तो हमने संस्मरण सुना है, पर उसके बाद जो जैनेन्द्र वर्णी हुए हैं उनकी संलेखना तीसरी में आचार्य महाराज के चरणों में हमारे सामने ही हुई 1983 में 22 मई के समय भीषण गर्मी में। वर्णी जी की, गणेश प्रसाद वर्णी जी की संलेखना के बारे में तो सुनते हैं कि उनकी भी इसी में हुई थी, उन्होंने तो किसी को बताया ही नहीं था, और धीरे धीरे क्रम से आहार का त्याग करने लगे तो जो आहार कराने वाली माँ थी उसने चिंता व्यक्त करी और जो दो चार लोगों से कहा, उन दो चार लोगों ने जो उस समय विद्वान थे बड़े बड़े, उन विद्वानों को चिट्ठियाँ लिखी कि भाई हम 4-5 दिन हो गए हैं, वर्णी जी तो धीरे धीरे, और रोटी और दाल सब्जी थोड़ी लेते थे उसमें भी कमी कर दी, कुछ कहते नहीं हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, समय सार का पाठ करते रहते, किसी से अब तो चर्चा भी नहीं करते, आओ आप लोग और देखो कि बात क्या है। आए तो पूछा तो कुछ नहीं बताया, इस करबट लेते थे उधर जाकर के किसी ने कहा कुछ तो बोलो वर्णी जी, तो करबट ऐसी ले ली, उस तरफ ही मुंह कर लिया कि मैं, ये इंडिकेशन था कि मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं जो कर रहा हूं वो मेरी अपनी साधना है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वर्णी जी कुछ करें और अव्यवस्थित हो, उनका तो अनुशासित रहा जीवन। सो खोजबीन की गई, समय सार के शौकीन थे, अमृतचंद्र आचार्य की टीका जो आज अच्छे अच्छे लोगों से बांचते नहीं बनती संस्कृत की, उसके अर्थ लगाते थे और मुखाग्र। उसी समय सार की जिल्द निकाली, एक जिल्द निकाली, दूसरी जिल्द कवर लगा था उसमें निकाली तो एक कागज रखा था, उस कागज में लिखा था जी अब हमारा साथ नहीं देता, इसलिए हमने भी इसकी सेवा टहल कम कर दी है। जी कौन? जी हमारा आप साथ नहीं देता, हमारे धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करने लगा है, हमारी एक बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, हमने अब इसलिए इसका साथ देना छोड़ दिया है। और पहले दिन अभी तक मैं इसको 4 रोटी देता था, मैंने इसकी रोटियां आधी कम कर दी, दूसरे दिन 1 कम कर दी है, और 8 दिन का हिसाब लिखा था। इससे मालूम पड़ गया कि आज 8वां दिन है, संलेखना ले चुके हैं, किसी को खबर नहीं लगने दी। और आखिरी समय भी उतने ही समता परिणाम से और देह का त्याग कर दिया। ऐसे ही जैनेन्द्र वर्णी, जिनको कि 17 वर्ष की उम्र में ट्यूबर क्लासेस हो गया था, दोनों लंग्स लगभग लगभग एक तो आधा डैमेज हुआ था, दूसरा 3/4। इसके बावजूद भी जब उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऐसी मेडिसिंस लेनी पड़ेंगी जो कि एग के साथ लेनी पड़ेंगी, अंडे के साथ लेनी पड़ेंगी, उन्होंने कहा मरना स्वीकार, लेकिन चीज का नाम ही मत बोलो, लेना वेना तो बहुत दूर की बात। उन दिनों ये इस तरह टीवी का इलाज नहीं होता था, असाध्य रोग था, यक्षमा राज रोग कहलाता था। लेकिन कर्म का ऐसा, साथ में पुण्य का उदय भी और पुरुषार्थ भी, कि उन्होंने संलेखना ग्रहण करने की 32 साल में तैयारी कर ली और 6 महीने तक अकेले सौंफ का पानी पिया। सो उस सौंफ का पानी पीने से और पता नहीं क्या भीतर परिवर्तन हुआ कि वे पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए। गए थे संलेखना लेकर के देह को छोड़ने और देह अब जो है साथ देने लगी, तो सबने समझाया कि अब इसको छोड़ने से क्या मतलब, छूटने लगे तो छोड़ दो, अब वो अभी छूट नहीं रही तो अपन जबरदस्ती छोड़ो, ये तो अपने धर्म में लिखा नहीं, छूटने लगे तो छोड़ दो भाई। तो उसके बाद रुक गए, लेकिन उस रोग की वजह से छुल्लक का पद छोड़ना पड़ा, ब्रह्मचारी बनकर के रहे और 17 वर्ष में जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा, जो आज कई लोगों को अभी देखना नहीं आता कि इसमें से शब्द कैसे ढूंढें। 6000 शब्दों का डिटेल है, 150 ग्रंथों में सम्यक दर्शन के बारे में कहां क्या लिखा है, ये एक अकेले सम्यक दर्शन की हेडिंग में मिल जाएगा। ऐसे 6000 शब्दों के बारे में 150 ग्रंथों में कहां कहां क्या दिया हुआ है, पूरे हेडिंग्स बना करके उनका डिटेल, 4 वॉल्यूम है बड़े बड़े, छोटे से 6-point फॉन्ट लेटर्स होते हैं उसमें लिखा गया है और इतने बड़े वॉल्यूम है। उनकी वो जो लिखने की उनकी रद्दी है उसके 20 बोरे बने थे, जिसमें कि उनने लिखा था फिर छपा था, ये 20 बोरे में वो कागज भरे गए थे, इतना था। इससे अनुमान लगाइएगा कि क्या मेहनत की होगी, क्या परिश्रम किया होगा, क्या जिनवाणी का अध्ययन चिंतन मनन किया हो। और फिर आचार्य किसी को उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं कर पाए, एक थोड़ी सी उनके मन में ये रही। आचार्य महाराज के दर्शन के बाद, उनकी परीक्षा करने के बाद, फिर भरी सभा में और गदगद कंठ से अश्रुधारा बहती जाती और स्वीकार किया कि मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं माना, मैं आज आचार्य महाराज को पूरे हृदय से अपना गुरु मानता हूं और शेष जीवन उनके चरणों में सौंपता हूं, वे मुझे संलेखना दें दिलाएं। तब आचार्य महाराज ने 1.5 साल तक उनकी संलेखना की तैयारी करवाई और उसके बाद ईसरी में संलेखना जब चल रही थी तब हम लोगों को, हमें कहा कि जाओ वर्णी जी को रोज दोपहर का समय निश्चित कर लो, समय सार प्रिय है, उसकी गाथाएं सुनाया करें। हम गए तो हमने एक के बाद एक 14 गाथाएं वर्णी जी को सुनाई, वर्णी जी चुपचाप सुन रहे। हमने सोचा कि और काय को सुनाएं, पहले पूछ तो ले लें कि कैसा है, अब आपको इतने सुनाने पे अच्छा लग रहा है और सुनाएं। हमने कहा वर्णी जी और सुनाएं क्या, तो धीरे से बोले कि गाथा तो एक ही पर्याप्त है। तब हम चुप रह गए, धीरे से जाके आचार्य श्री से कहा कि वर्णी जी तो बहुत ज्ञानवान हैं और उनको ये सब गाथाएं रटी हुई हैं, अपन उनको सुना रहे हैं, हमने उनको 14 सुनाई, तो कहने लगे कि गाथा तो एक ही पर्याप्त है, इसका मतलब है कि एक ही गाथा के चिंतन में वे बहुत समय व्यतीत कर सकते, 14 की जरूरत ही नहीं है। तब आचार्य श्री खुद उठ करके आए, सारा संघ बैठा, फिर रोज का क्रम बन गया। एक गाथा पर आचार्य श्री आधे पौन पौन घंटे तक उनके साथ चिंतन करते, उनके साथ डिस्कशन करते और उस पर व्याख्यान आचार्य श्री का होता। इस तरह से उनकी साधना चलती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कि इसमें तो अभी बहुत है माल भीतर। हाँ, ये तो उनकी ये हड्डी और उसके ऊपर बस ऐसे जोर से समझ लो कि ये स्किन ऊपर की ये लपेट दी गई है पूरे शरीर में। एक एक हड्डी जो है आप गिन लें, ऊपर से चर्म लपेटी, बस इतना ही है, भीतर तो कुछ नहीं शेष रहा। लेकिन जब बैठते तो सवा दो घंटे सीधे होकर के और सुबह दोपहर शाम और सामायिक पूरी सजगता के साथ सामायिक करते। ये ज्यों की त्यों जो चर्या है वो उनकी बनी रही जीवन के अंत में, क्योंकि धर्म को ही संभाले रहना मुख्य उद्देश्य है किसी भी साधक का। शरीर की संभाल तो जितनी आवश्यक है सो ठीक है, लेकिन शरीर के साथ साथ परिणाम संभले रहवे, धर्म संभला रहवे, ये संलेखना लेने वाले साधक की आवश्यकता। ये सब चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि आहार से हम लोग आए। वर्णी जी ने कहा कि बहुत गर्मी बहुत है यहाँ कमरे में। महामंदिर के नीचे तलघर था, उसमें उनको 12 बजे शिफ्ट करते थे, तो उस दिन बहुत गर्मी होने से हम लोगों ने उनको एक स्ट्रेचर जैसी गोदी बना ली थी, उसमें बिठाल करके कहा कि चलते हैं, अभी चलते हैं, कोई बात नहीं, 10:30 बजे हैं, गर्मी भीषण है, वहीं चलते हैं, 12 बजे की जगह पहले ही चलते हैं। ले जाने लगे तो उसमें करीब 10 सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए। उसके ऊपर पहुँचे तो बोले कि आचार्य महाराज आ गए क्या? उस समय जो सेवा में रहते हैं उनकी थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है। इस तरह की बात अगर शपथ करता है तो ये संकेत है, उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं कि काय बुलाएगा, नहीं, उसका इशारा पर्याप्त है कि आ गए आचार्य महाराज क्या। तो फौरन एक साधु ने जाकर के उनको आचार्य श्री को कहा कि ऐसा उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री आ गए क्या? तो कुछ भी नहीं, आचार्य श्री ने जैसे इतना सुना उठा करके वे वहां से चल पड़े। यहां हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सीढ़ियां उतार रहे हैं, 10वीं सीढ़ी नीचे उतरे हैं और ऊपर फिर उन्होंने एक बार कहा कि आचार्य महाराज आ गए क्या? और हम लोगों ने देखा तो ऊपर आई गए थे सीढ़ी पर। आचार्य श्री बोले हाँ मैं आ गया हूं। तो नीचे से ही अत्यंत प्रसन्न हो करके और आचार्य श्री को देखा और देख करके बोले नमोस्तु महाराज, और नमोस्तु शब्द निकला है और गर्दन धीरे से नीचे झुकी और प्राण विसर्जित। अब आप नीचे रखो तो रखते रहो, बाद में रख देना, हम तो चले ऊपर की तरफ हैं। बड़ा आश्चर्य हमने वो एक दृश्य इस तरह का देखा कि प्राण कोई इस तरह से भी छोड़ सकता है सहजता से, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता सिर्फ किसकी है? संयमी कोई सामने हो, मैं उसका दर्शन करूं और फिर प्राणों को विसर्जित करूं। जिसको गुरु माना है उसके सम्मुख प्राणों को त्यागना परम सौभाग्य। परोक्ष में गुरु का स्मरण करके प्राण त्यागना तो आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष में गुरु को नमोस्तु करके और प्राणों का विसर्जित कर देना, ये जो है ऐसी भावना अपन को तो कम से कम भानी ही चाहिए। उनके जीवन में तो ये उन्होंने करके दिखा दिया। एक और सिद्ध सागर जी अभी नेमावर में, जिनकी संलेखना हुई आचार्य महाराज के सानिध्य में, बड़े मजबूत, वे भी 90-92 साल के होंगे हैं, लेकिन मजबूती बहुत। आपस में चर्चा चले कि अब तो थोड़े दिन के लगते हैं। जेठ में किसी ने कहा सुखिन लावे ने मर है अषाढ़ के पहले, ऐसा बोलते थे सीधा सीधा। तो फिर समता सागर जी एक दिन दोज के दिन, अषाढ़ की दोज आ गई, तो दोज के दिन बोले कि अब तो एक ही दिन, एक ही आज को दिन निकल जाए तो ही मुश्किल है, कह ले पांचे के पहले ने मर, ऐसा बोलते थे। इतनी जागरूकता। और ठीक पंचमी के दिन, जैसे कहा था कि पंचमी तक तो नहीं मरेंगे, और पंचमी के दिन और देह का त्याग कर दिया। उनको ये सौभाग्य मिला कि 42-45 मुनि महाराज, जैसा कि आगम में लिखा है कि एक एक शपक की संलेखना कराने वाले 48 मुनि महाराज होते हैं, उनके लिए 45 लगभग, और मुनि महाराज उनके सेवा टहल के लिए थे, आचार्य महाराज तो प्रमुख थे ही, उनके अलावा 45 महाराज और उनकी सेवा में। 48 महाराजों की क्या आवश्यकता, ऐसा मन में प्रश्न उठ सकता है। भैया आचार्य भगवंतों ने इसके बारे में लिखा, 12 काम हैं और 4-4 मुनि महाराज एक एक काम को संभालते हैं। मैं आपको बताऊं, 4 मुनि महाराज का काम उनको सहारा देना, उनकी सेवा करना, और कोई काम नहीं उनका, सिर्फ इतना ही कि उठना हो तो सहारा दे दिया, कमंडल चाहिए तो उठा के दे दिया, पीछे पकड़ानी है तो वो दे दी, करवट बदलवानी है वो बदलवा दी, उनका इतना ही काम है। 4 महाराज सिर्फ इसके लिए बैठे उनके पास, दूसरे 4 महाराज बैठे हैं उनके लिए कि उपदेश देना, परिणाम संभालने के लिए, जैसे बने वैसे प्रेम से और उनको धर्म की चर्चा सुनाना, इसके लिए 4 महाराज नियुक्त हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक का काम है, घंटे भर का काम थोड़ी, 24 घंटे के लिए 4 महाराज नियुक्त कर दिए कि आप अपने अपने अलग अलग समय में। रात्रि में फिर नहीं बोलने की कोई नियम नहीं रहेगा, छपक के सामने तो रात्रि में भी आवश्यकता होने पर बोल सकते हैं। 4 उपदेश देने वाले मुनि महाराज, 4 मुनि महाराज उनके लिए आहार लेकर के आने वाले, और 4 मुनि महाराज पेय पदार्थ लेकर के आने वाले, वे अपने हाथ से नहीं ले आऊ, शावक के साथ में लेकर के आएंगे, नहीं तो आप इसका अर्थ ही लगा लो कि महाराज आहारों को ले देंगे। 4 मुनि महाराज शावक के यहां जाकर शावक से और जो ठोस आहार है उसको लेके आएंगे, 4 पेय पदार्थ देख करके और लाएंगे, और 4 मुनि महाराज उस लाए हुए आहार का शोधन करने के लिए, बताइए आप 12 तो इसी में एंगेज हो गए उनके आहार चर्या में। और फिर कहते कि 4 मुनि महाराज उनके मलमूत्र के विसर्जन कराने के लिए नियुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, जहां सल हो रही है उस स्थान की सुरक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 महाराज चौकीदारी करते हैं, सुरक्षा के लिए बैठे रहते हैं। 4 मुनि महाराज रात्रि जागरण करते हैं, पूरे समय जागृत रह करके और सेवा टहल करते हैं। 4 मुनि महाराज जो है वो स्वपर का उपदेश करते हैं, जहां यहां संलेखना हो रही तो उससे बहुत दूर दूर तक चारों दिशाओं में बैठ करके जो लोग आते हैं उनको समझाते हैं। विभिन्न मत मतांतर वाले लोग आकर कहते कि ये क्या चल रहा है, आप अपने हाथ से मरना चाहते क्या, ये तो आत्मघात है, उनको समझाते हैं, उनके शंकाओं का समाधान करते हैं। लेकिन उन 4 मुनि महाराज की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की तरह 4 और मुनि महाराज उनके साथ रहते कि गड़बड़ ना हो जाए, और देश विदेश की सारी खबरों की जानकारी रखने वाले 4 मुनि महाराज अलग बैठे रहते, जिनको सब के बारे में मालूम है, कहां क्या इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। इस तरह से ये 48 मुनि महाराज एक शपक की संलेखना करा रहे हैं। बताइए संलेखना कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका मतलब आखिरी समय, जीवन भर कोई साथ देवे चाहे न देवे, लेकिन आखिरी समय परिणाम संभालने के लिए और इतने इतने लोगों की आवश्यकता होती है, ये संलेखना ऐसी महत्वपूर्ण है। परिणाम बिगड़ने में देर नहीं लगती, बनने में तो बहुत परिश्रम चाहिए। सावधानी जिंदगी भर बनाए रहो, और असावधानी एक क्षण को हो जाए तो जिंदगी भर का किया हुआ और सब साफ हो।
सिलादा कौन महाराज को प्रदान कर दी महाराज जो आहार
करते, वो तो सब प्रक्रिया तो वैसे ही चलेगी,
आहार करते कि नहीं करते,
आहार तो करेंगे
उजना?
करेंगे, चारों महाराज करेंगे आहार, वो तो सिर्फ आहार की कि ये चीज उनको चाहिए है लेकर के आएंगे उनके साथ में, अपने में से
पड़गा रहे महाराज फिर आहार नहीं लगाएंगे।
वो वैसा नहीं है महाराज, आप ऐसा कह रहे वैसा नहीं है, वे तो 4 महाराज पेय पदार्थ लेने और आहार लेने जाते हैं, श्रावक के घर जाकर के और बिना पड़गाए हुए वहां से उसको कह करके कि ये सामग्री वहां ले चलना है, क्योंकि वे वहां वहां तक थोड़ी आएंगे, जैसे अपने बीमार हो जावे, बीमार हो जावे तो अब कहूं चल ही नहीं पा रहे तो क्या करते फिर। फिर मुनि महाराज श्रावक को बिठा के कह देते देखो ऐसो ऐसो कर लियो, जो जो सब चीजें करके ये तहीं पास के पास में पड़गा लियो, और तहीं खड़े हो जाते महाराज जो चौका में जाके कि तुम्हारे गड़बड़ ने करियो, हम जैसी बताएं उसको दियो, ऐसा आगे समझ लीजिए करने पड़े जापन को तैयार सबके जीवन में आएगा है? किसी के में पहले आएगा, किसी के बारे बाद में आएगा, लेकिन इसकी तैयारी सावधानी तो आवश्यक है। क्या हुआ, एक बैराग सागर जी थे, बदामी लाल नाम था उनका, हमने उनसे जब संलेखना ले ली, उनने उनको बहुत शौक था संलेखना का, बड़ी भावना थी उनकी, आचार्य महाराज से बहुत निवेदन किया, वृद्ध महाराज थे, आचार्य महाराज ने मुश्किल से स्वीकार किया, उनको मुनि दीक्षा दे दी। बताइए आहार जी के चतुर्मास में 1985 तो पहले मुनि दीक्षा दी चतुर्मास की शुरुआत होने पर, और चतुर्मास भर उनकी संलेखना का कार्यक्रम चला। तो हमने एक दिन ऐसी चर्चा में पूछी कि महाराज आपको नाम बदामी लाल पहले को काय होगा, तो कहले भैया हम पल्लेदारी करी, हमने पल्लेदार कहलाते जो गल्ला मंडी में काम करते, तो कहते वो काम किया, तो कहते छह पैसा एक आना छह पैसे का होता था, कहते एक आना मिलता था, तो एक आना में से छह पैसा में से चार पैसा तो बचा के रखते, और दो पैसा की छह बादामों में लगती, तो कहले छह बादाम दो पैसा की खरीदते थे, और घर से तो डिबिया में रख के घी और बूरा मिला करके जी घर से ले आते थे डिब्बी में, तो जब छह पैसा मिले सो में से दो पैसा की, और मैंने थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन घंटे के बाद उतने बोरे उतार लेने पे छह पैसे मिलते, एक आना मिलते थे कि इतना अनलोड करो या कि लोड करो उसको सामान को, उतने के छह पैसे, तो कहते कि ऐसा तीन दफे छह छह पैसे मिलते थे, तो हर बार जा करके चाय समोसा की चलन नहती पहले जैसी आज है, हाँ कि जाओ से जल्दी से चाय खाया समोसा खाया है, उनने तो दो पैसे की छह बादाम नहीं, और छह बादाम ले आए और अपनों निकारो घी शक्कर, तो घी शक्कर के साथ में छह बादाम खाई और फिर से फुर्सत चलो आगे बढ़ो। कहते तो हमारा नाम लोगों ने इसलिए बदामी लाल, बदामी लाल रख लिया। अब उन्होंने दीक्षा ले ली, मैं आपसे ये कह रहा था परिणाम अच्छे हैं, संभाले हुए हैं, वृद्धावस्था है। देखिएगा साहस कैसा है जीवन में, संलेखना के समय वो ही आवश्यक होता है। अब क्या हुआ कि खड़े होके हाल लेना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी हो, कोई रियायत थोड़ी है उसमें कि आप मुनि महाराज हो अब कमजोर हो गए इसे आप खड़े होके न ले या दूसरा कोई खड़ा कर दे, नहीं, आपको तो अपनी अंजलि बांध के खड़े होने की जब तक सामर्थ्य है ऐसे नहीं हो सकत खड़े कि ऐसे खड़े हो जाओ नीचे हाथ टेक के, अंजलि बांधो फिर खड़े हो, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। तो वैसे खड़े होने की जब थोड़ा बहुत होगा तो हाथ आप अपने लगा देंगे कोई थोड़े सहारे के लिए, तो वैसे उनको खड़े कर दिया गया और आहार के लिए अंजलि फैलाई। अभी तो देखने वाला देखता है कि क्या दिक्कत है, जैसी हम थाली में खाते से ही महाराज जल्दी फटाफट खाते रहते, भैया सो अबे तो सब ठीक है, लेकिन जब वृद्धावस्था ज्यादा हो जाती और देह बिल्कुल जर्जर हो जाती तब क्या होता, अंजलि उनकी ऐसी जाती थी और इसके पहले कि मुंह तक पहुंचे और वो नीचे गिर जाती। दो तीन बार ऐसा हुआ, पानी मुंह में तो लगा थोड़ा सा और नीचे गिर गया। आचार्य महाराज वहीं खड़े देख रहे थे, हम लोग सब जो है श्रावकों को दिशा दे करके बताकर समझा करके कि ऐसा ऐसा करो, आचार्य श्री उतने में बोले कि गिलास में दे दो गिलास में। बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोग खड़े थे चुपचाप कि महाराज कह रहे हैं श्रावकों से कि गिलास में दे दो पानी गिलास में, क्योंकि लिया नहीं जा रहा। हम लोग तो फौरन समझ गए कि परीक्षा की घड़ी है, अब देखें क्या होता है। महाराज को कहा कि महाराज गिलास में भर करके कि पकड़ा दो हाथ में पकड़, उसी में जी अपनी अंजलि बांधे सो अंजलि में ते गिलास धर लो पी लो। आचार्य महाराज सामने खड़े हैं, वो कह भी रहे कि ले लो गिलास ले लो, लेकिन वे महाराज जो कि पानी भीतर नहीं जा रहा और कहा जा रहा कि ले लो ग्लास से, नहीं पानी एव पात्र पानी पात्रा, हाथों की अंजलि ही जिसका पात्र है, अन्य समस्त पात्रों का जिसने त्याग कर दिया है वो कैसे गिलास इत्यादि पात्र को स्वीकार करे भोजन के लिए, इनकार कर दिया। जो लोग थोड़ा सा हाथ पकड़े थे उनसे कहा कि बिठाल दो और बैठ गए। आचार्य महाराज को मैंने देखा अत्यंत प्रसन्न और बैठते ही साथ उनके सिर पर पिछी लगा दी कि जीत गए। अगर स्वीकार कर लेते कि महाराज कह रहे ले लो गिलास पानी पीना है तो फिर सरलेखना, सरलेखना क्या, फिर तो 28 मूल गुण ही बहुत मुश्किल होती। और नीचे बैठ करके कायोस्तर करके आचार्य श्री से कहा कि जब ये शरीर इस योग्य नहीं रहा आहार जल ग्रहण करने के, तो मैं समस्त आहार जल का त्याग करके उसका विसर्जन कर। 3 दिन तक उनका जीवन शेष रहा, आखिरी समय प्राण कैसे निकलते ये मैंने उस समय देखा। बस इतना ही बात सुना करके पूरा करता हूं। आज तो मैं भी थोड़ा विलंब से आ पाया है। आप जो है सोचते होंगे कि महाराज जो है और अब पंक्चुअल नहीं रहे, अब जो है समय का कुछ ध्यान नहीं रखते, 8:30 की जगह जब चाहे चले आते भैया। तो हम आपको सुबह से और हमारी अपनी जो मुश्किलें हैं उनके बारे में आपसे हम क्या चर्चा करें, ये कहो कि हम तो जितना हमसे बनता है सुप्रवचन इत्यादि कर रहे हैं, बाकी इसको चलाना आसान नहीं है, हमें मालूम है 23 साल से इसको हम किस तरह चला रहे हैं। और इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि मैं जो समय दे देता हूँ उससे 5 मिनट भी यहाँ वहाँ करना मुझे खुद भी ठीक नहीं लगता। फिर भी थोड़ा सा और 2 मिनट में उनकी वो चर्चा करें, प्राण कैसे निकलते हैं मैंने तो पहली बार और उन क्षणों में देखा आहार जी के अंदर शांति से। पहला दिन तो निकल गया अन्न जल का त्याग, कई लोगों के तो 10-10 दिन निकल जाते कुछ नहीं होता, लेकिन अब आयु तो उतनी शेष रही थी, आयु शेष रही है, कम शेष रही आयु, तो उसमें 5 मिनट भी एक करवट से नहीं लेट पाते थे। 5 मिनट में ये करवट फिर बदलो फिर बदलो, फिर बैठ गए फिर लेट गए। प्राण निकलने से पहले बहुत मुश्किल होती है, अगर देह के प्रति आसक्ति है तो प्राण निकलने में बहुत दिक्कत हो, और छटपटाहट आखिरी दिन तो समझ में आने लगा था कि अब किसी भी क्षण प्राण निकल सकते, और प्राण निकलने के घंटे भर पहले वो छटपटाहट खत्म हो गई। 1 घंटे शेष रहा है, अब तो बिल्कुल एकदम शांत है, तो लगा कि अब परिणाम समझ जाएंगे और शरीर भी बिल्कुल निश्चल है पड़ा हुआ। अब नहीं कह रहे कि करवट बदल दो बिठाल दो या कुछ कर दो, शांत हैं, सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब एकदम शांत हो गया। आचार्य श्री समझ गए, हम लोगों को तो अनुभव था नहीं, आचार्य श्री बोले कि बस थोड़ा समय और शेष रहा। हमने कहा अब तो अच्छे हो रहे, पहले से तो ज्यादा अच्छे, कहते ये अच्छे होना नहीं है ये तो अब धीरे धीरे शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया है। हमने देखा और पहले जो है ये यहां से पल्स चली गई, ये पल्स खत्म हुई, देख रहे थे हम निरंतर, हमारा ध्यान इसी में था कि देखें किस तरह से क्या होता है क्या प्रक्रिया होती, तो पल्स चली गई सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है सेकंड नंबर पैर, कहते ना कि पैर ठंडे होना शुरू होते, तो उसके बाद जो है देखा तो पैर के पास की जो नर्व्स हैं उनमें जो स्पंदन था वो खत्म हुआ। उसके बाद झट से जो है फिर यहाँ यहाँ देखा जाता है, तो यहाँ देखा तो यहाँ चेतना थी, यहाँ तो फड़कन थी, वो फड़कन भी थोड़ी देर में खत्म हुई, फिर लास्ट जो है यहाँ पर फड़कन हुई, और यहाँ की फड़कन के बाद देखा तो मुंह जो है वो बंद कर दिया था उनका कि उसमें खुल ना जाए एकदम। लेकिन आप कितने भी करिएगा अगर खुला हुआ मुंह है प्राण निकलना होंगे तो बंद हो जाएगा, बंद मुंह है तो प्राण निकलेंगे तो खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो नाक जो है सीधी है तो नाक थोड़ी सी किसी ना किसी तरफ टेढ़ी हो जाएगी, कान हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा या कि गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, प्राण निकलेंगे। ये हमने सारी चीज़ें वहाँ पर मार्क की और धीरे से जो है उनके प्राण निकल गए, शरीर जो है वहीं के वहीं पड़ा रहे। इतनी सी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया के लिए कौन कितने अच्छे ढंग से संपन्न करेगा इसी का नाम सरलेखना है। ये भयभीत करने वाली प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसको आंखों के सामने देखो तो लगता है कि ऐसा ही सौभाग्य अपने को प्राप्त हो कि हम भी जीवन के अंत में, क्योंकि जितनी शरीर से कम आसक्ति होगी उतनी जल्दी छूट जाएगी, और जितनी इसमें आसक्ति रही आएगी उतने ही झटके लगेंगे प्राण निकलने। ये तो समझ लो आपकी, जैसे कोई चीज पकड़ रखी हो तो छुड़ाना हो तो बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद निकलती है, और किसी ने पकड़ ही नहीं रखी तो फौरन इधर से छूट गई। ये प्रक्रिया संलेखना की है। अपन ने बहुत सारी बातें संलेखना के बारे में समझी, आज संलेखना का उपसंहार हुआ। अपने को आज क्या शिक्षा लेनी कि अपने शरीर से धर्म ध्यान जीवन भर करना, और इस तरह से करना कि जीवन के अंत में धर्म ध्यान की रुचि बनी रहे, धर्म ध्यान छूट ना जावे। शरीर छूटता हो तो छूट जावे, मेरा रत्नत्रय ना छूटे। मेरे परिणामों में श्रद्धा ज्ञान और अपने व्रतों के प्रति दृढ़ता बनी रहे, और देह तो एक दिन छूटना ही है, उसको छोड़ते समय और अपने धर्म को संभाले रहें। इसी परिणामों को अपन, इसी भावना को जीवन भर बनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच बच कर गाफिल निद्रा में सोता हो,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो,
तो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान क्या करते सुख दुख दोनों की गणियों में,
अंतर ज्वाला हरती वारी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां,
भवंदन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते गो शम शम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
त्याग के मूर्तिमान शिव पति पंती गुरुवर, मिथ्या तमनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर वास वे को मानु शिव कानी है,
छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है,
अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और यानी है,
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जीन वाणी है,
वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देश
उदक चंदन तांदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलाग के
धवल मंगल
बोले जिन ग्रहे मुनि राज महम यजे। ओम नृम श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगत परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा अनर्घ्य पद प्राप्त है जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा।
शाम को 3:15 बजे इसी स्थान पर शंका समाधान। सारे बाहर से अतिथियों का स्थानीय दिगंबर जैन समाज स्वागत करता है, सम्मान करता है। बाहर से आए अतिथियों के लिए स्थानीय दिगंबर जैन समाज ने बाजार नंबर 7 के कम्युनल स्टोर मकान पर भोजन की व्यवस्था की है। सारे अतिथियों से विनम्र प्रार्थना है स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से वहीं जाकर के भोजन लें।